कभी कभी मन खराब कर देती है, सत्यभामा जी की मां थी। उसके बाद में सत्यभामा के घर में आए और उस समय में रुक्मिणी जी के घर में ही नारद जी आए। नारद जी ने कहा, प्रभु हमारी एक बड़ी वासना है, बहुत दूर से आया हूं। नारद जी ने, कृष्ण ने अपने पटरानियों कहा जरा सावधान हो जाना, नारद जी आए हैं झगड़े लगाने वाले, जरा पहले से ही सावधान रह जाना। चुपके से कहा नारद जी ने, प्रभु हमारी बहुत एक विनती है, बहुत आशा लेकर के आपके चरण में आया, ये मैं स्वर्ग से पारिजात पुष्प लेकर के आया हूं, इसकी सुगंध लेने से ही आदमी सप्त में सार होता जा रहा है, कभी भी पुष्प वृद्धा नहीं होती, इसलिए मेरी इच्छा है आपकी जितनी पटरानियां हैं इनमें जो सबसे श्रेष्ठ आपकी प्यारी है उसको हमारे सामने में दे दो। अब तो कृष्ण की बड़ी शामक आई, वो प्रत्येक रानियों से प्रतिज्ञा करता है कि तू ही हमारी सबसे अधिक प्यारी, विशेष करके सत्यभामा जी को, रुक्मिणी को और कालिंदी इत्यादि सब, विशेष करके आठों को सबसे अकेले में कहते थे तू हमारी सब, उसे कहते तू हमारी सब, बड़े चाकलू। अब तो सबके सामने थे तो बात खुल जाएगी, खुल जाएगी, अब खुल जाएगी तो सत्यभामा तो बड़ी बिगड़ जाएगी, बड़ी मालिनी है, बस वो खुल जाए नहीं, कहा जैसे अब प्रभु अब समय नहीं है आप जल्दी से दीजिए। तो कृष्ण इधर उधर देकर के अंत में रुक्मिणी जो पास रहती थी उनके हाथ देते ही, और तो कुछ बोली नहीं, किंतु सत्यभामा वहां से पैर को पटकती हुई क्रोध से एकदम लाल हो गई, अपने रणवास में चली गई, अपने अच्छे कपड़ों को हटा दिया और गंदे कपड़े धारण कर लिए, सुनर के आभूषण सब दूर कर दिए, कृष्ण ने जितने आभूषण दिए सबको फेंक दिया और पिछक पिछक कर के रोने लगे। कृष्ण ने सोचा यही तो होना था और क्या करें, तो कृष्ण को तो कुछ शौक भी है और कुछ अभ्यास भी है गोपियों को मनाने का, जो राधा जी को मना सकता है इसको मनाना क्या है, तो छुट्टी करती बात। कृष्ण आए उनके घर में, जहाँ सो करके सांप जैसे फुटका रही थी, जैसे हाथ रखा मनाने के लिए तो हाथ उठा करके फेंक दिया, जाओ जाओ यहाँ यहाँ पर मत आना, जाओ रुक्मिणी के पास में जाओ। थोड़ी देर के बाद में बोले, अरे तू ऐसी भोली भाली है कि तीन गुण समझती नहीं, अरे इसको तो एक गुण दिया है, आज तुम कहो तो तुम्हारे घर में पारिजात का पेड़ ही लगा दे जो दिन रात यहाँ पर, अरे जाओ 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 रुक्मिणी के घर में लगाओ, यहाँ हमारे यहाँ जरूरत नहीं, अच्छा तो चलो तुमको विश्वास नहीं, अच्छा तो चलो देखे तुम लाता है। बस गरुड़ के साथ में बैठाया, स्वर्ग ले गए देवताओं को पराजित करके, पारिजात पुष्प ले आए और घर में नरका सुर का वध किए, और उसके घर में जब पारिजात पुष्प लगाने को हुआ तो क्या किया, रुक्मिणी जाके सबको निमंत्रण दिलवाया, रुक्मिणी की आई, रुक्मिणी का दिल जरा उदास है, उसके घर में देखा हमको एक फूल दिया इसको दिया गया, इतने पारिजातों के साथ में पुष्पों के साथ एक वृक्ष ही लगा दिया, उनके मन में कैसी चीज होगी कि हमसे अभी प्यार से कुछ बोली नहीं। इस प्रकार से वार्ता में लीला करते हैं, ऐसे लीलाओं में से ये उद्धव जी सबसे श्रेष्ठ, उनकी समस्त लीलाओं में रहते हैं, यहां तक कि कृष्ण गोपियों के विरह में रो रहे हैं। क्या किया उन्होंने, वो एक दिन बैठे हुए थे गुरुकुल से आए, हाँ, तो ये उनको जो बतलाया कुब्जा को, कुब्जा को काम की लावट आ है कृष्ण से, इसलिए यह प्रेम प्रेम नहीं है, साधारण ही प्रेम है, प्रेम इसीलिए कि कृष्ण का अतिरिक्त और किसी को प्यार उसने नहीं किया इतने दिनों तक, किंतु उसने कामना कुछ इस भोग की लावता है, इसलिए ऐसे प्रेम से कृष्ण रेंगते नहीं। और समझ के सारा की चिंती है द्वारकावासी पुत्र की भी लावता है, कृष्ण सेवा की भी लावता है, इसलिए समर्था नहीं है, गोपियों का ही प्रेम समर्था है, पति इत्यादि सबको छोड़, लोग धर्म देश धर्म पूर्ण धर्म सबको छोड़कर कृष्ण के चरणों में जाए। इसलिए समस्ता प्रेम है, इसलिए कृष्ण कहते हैं न पारे हम निर्वंच संजुजा सुथा रूपस्यापि उदार सुथा विवा मा सूर्यन भजन गृह श्रृंखला संबित तरुवा पश्चा। गोपियों का इनको कभी नहीं शोधन कर सकते, कभी गोपियों से कहा कृष्ण ने मैं तुम्हारा ऋण नहीं शोधन कर सकता। क्यों नहीं, क्यों नहीं? आपको कहते हैं कि मैं भगवान होगा तो मैं कहूंगा कि कुछ मांग लो तो तुम मांगेगी यही तो जो आपकी सेवा दे, तो सेवा दे तो फिर बन गया, बन गई। हम देखो तुम लोग सबको छोड़कर के हमारे पास आए, मैं किसको छोड़ सकता हूँ? नंद बाबा को छोड़ू, यशोदा मैया को छोड़ू, किसी सखा को छोड़ू, किसी साधारण भक्त को भी मैं नहीं छोड़ू। ये जब हम मां प्रसन्नते काम प्रसन्न, जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ करके हैं, ऐसे किसी भक्त को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो ऋण बन जाऊंगा। इसलिए गोपियों के ऋण को कभी नहीं चुका सके। ऐसे गोपियों को सांत्वना देने के लिए नंद बाबा यशोदा जी को सांत्वना देने के लिए, सखाओं को सांत्वना देने के लिए अर्जुन को भेजा, न किस को भेजा?
उद्धव को,
जो ब्रज प्रेम के कुछ निकट हो, इसलिए उद्धव जी की महिमा समझ सकते हैं। किस लिए भेजा अब कल के प्रसंग में बतलाएंगे, आज समय हो गया है। बस एक कीर्तन
नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नन्मे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाने कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सर्वत्र चल रहा था गोपीनाथ जी के प्रकट इत्यादि का, और गोपीनाथ जी को हम कैसे समझेंगे? उनके पहले चैतन्य महापुरुष जी का चरित्र कुछ समझिए, तब ये समझना है, नहीं तो गोपीनाथ को समझा नहीं जा। गोपीनाथ जी को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु किस पद्धति को लेकर के आए थे और प्रचार किया, उस पद्धति को अवलंबन करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी माता के जन्म में आए तो ग्रहण लगा हुआ था, चंद्र ग्रहण शाम का, और करोड़ों लोग गंगा जी में स्नान करते हुए हरि बोल हरि बोल कर रहे थे, आने आसनी सब लोग मंत्र कर रहे थे महामंत्र, और गंगा में डूबी गया रहे। जन्म के प्रारंभ से और जब वो धन्यवाद इतना सुंदर था जिसका कोई ठिकाना नहीं, और रोता रहता है, और जब भी कोई हरि बोल कर देता और ताली बजाता हरि बोल हरि बोल कर ताली करने लगता, जगत को जन्म से ही शिक्षा दी, जब भी भगवान को पाना है, जब जन्म में सुखी रहना है तो भगवान का नाम कीर्तन करो। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम पलौ नास्ते पलौ नास्ते नास्ते वगति रखना। कलयुग में और किसी भी चीज से उपास्य से दान से पुण्य से पूजा से पाठ से नहीं होगा, यहाँ तक कि ठाकुर जी का अर्चन भी करते हो पूजन भी करते हो और नाम कीर्तन नहीं चल रहा तो अकेला अर्चन पूरा काम नहीं देगा। कलयुग में विशेष करके हमारे महाप्रभु जी कहते हैं, शिव गोस्वामी जी कहते हैं, जब तक
कलौ अन्या कतप्या हरिनाम संकर्तनेन जीव। भगवान के नाम के कीर्तन के साथ में यदि सब कोई कुछ करते हो तो कुछ फल देगा, नहीं तो फल नहीं देगा। इसलिए महामंत्र का कीर्तन अत्यंत आवश्यक है। चाहे पूजा कीजिए, अर्चन कीजिए, ध्यान कीजिए, योग करिए, सब कीजिए, किंतु उसमें कभी उन्हें क्या नाम करना, कौन सा नाम करना पड़ेगा। जो मन में आ गया वही करते हैं, राम राम राम, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, सब तो देगा। हमारे ऋषि महर्षियों ने इस नाम में सबसे अधिक शक्ति देती कलयुग के लिए। उन्होंने उपनिषदों में, वेदों में इस चीज को वर्णन कर दिया। करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले परिषद का उपनिषद में, वेद में लिखा गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यद्यपि ये सब युगों के लिए, किंतु कलयुग के लिए ये विशेष है। इसमें एक ही साथ में भगवान के 16 नाम आते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कोई यदि इसको ऐसे ना कहकर के ऐसे कहे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें हानि क्या है? कोई हानि नहीं। वो लोग कहते हैं बहुत हानि। क्या हानि है? अरे टेढ़ा जरा टेढ़ा हो, लड्डू जरा टेढ़ा हो और गोल हो या चपटा, उसमें क्या आता जाता है? चाहे इधर से खाओ चाहे उधर से खाओ, उसमें क्या आता जाता है? कोई मिठाई है उसको आगे से पीछे खाओ, चपटा बना लो, किसी का शकल बना लो, उसे क्या हास्य होता है? नहीं, हमारे ऋषियों ने आविष्कार कहा कि देखो समझ बुझ करके करो इसको। जैसा हमने कहा है, ये भगवान की मुख की बाणी है, वेद भगवान के हाथ श्वास है, वाणी है, इसलिए उसको अन्यथा मत करो, जैसा है वैसा ही करो। यदि उल्टा पुल्टा कर देगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। उन्होंने लिखा ब्रह्मा ब्रह्मांड पुराण में, पद्म पुराण में और दूसरे पुराणों में लिखा है, उसमें परिसंत और उपनिषद में भी लिखा। अनंत संहिता लिखा क्या है? ये देखो इसका क्रम ऐसे करना, पहले होगा हरे, इसके बाद फिर होगा कृष्ण, इसको दो बार बोलो हरे कृष्ण हरे, और इसके बाद में हरे और फिर राम, और उसके बाद में हरे राम और तब फिर हरे हरे कृष्ण, इसके बाद में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और इसके बाद में ऐसे ही हरे राम राम राम। ये ऐसा उन्होंने बतलाया, ऐसी पद्धति है। ये कोई नई बात नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु आए इसको कराया, नहीं। सब युगों के लिए अपने अपने मंत्र हैं, कलयुग का भी मंत्र भी तो वही बताया। इसलिए इस नाम को ऐसे ही करें। विशेष करके यह नाम, जब इसमें तीन नाम लिखते हैं, हरि कृष्ण और राम, किंतु इसका भी एक तात्पर्य है, जो लोग सांप्रदायिक मंत्र में दीक्षित नहीं है वो लोग तो हरे कृष्ण हरे राम जैसा हो वो कहेंगे, और जिस हरि कृष्ण राम सिंह ही लो लेने, किंतु जो लोग भव्य वर्ष में उनके सांप्रदायिक रीति में प्रतिफल लाभ करने के लिए जो चाहते हैं और परंपरा में आए हैं, वो लोगों के उपास्य दो नहीं होते, तीन नहीं होते। ये हरि कौन है जो सबका विपत्तियों को हरण करते हैं, चित्तों को हरण करते हैं, इसलिए ये कृष्ण ही हरि है, हरि अलग नहीं है। और राम कौन है? राधा रमण, राधा रमण, राम का ही नाम यहाँ पर राम है। विशेष करके हम लोग अकेले कृष्ण को नहीं मानते, शास्त्र में ऐसा नहीं माना गया। राधा जी के साथ में यदि कृष्ण नहीं होंगे तो उस मंत्र का नाम का कोई भी मतलब नहीं, इसलिए यहाँ पर बदलाया गया है। हरे कृष्ण के भी चित्त को अपने प्रेम मयी सेवा से हरण करने वाली राधिका जी का नाम हरे हरा है और हरा के हुआ है हरे, हे हरे हे राधिके। इसलिए यहाँ पर राधा कृष्ण का नाम है और दूसरे में भी हरे राम में भी हरे राधिका जी और राम राधा रमण कृष्ण। इसलिए जुगत उपासना का मंत्र है उसी जगह में लिखा गया है। इस मंत्र का फल क्या होगा? प्रेम में राधा कृष्ण का प्रेम मिलेगा यदि सत्रु से इसको ग्रहण करके नियमित रूप में इसका तात्पर्य समझ करके और इस प्रकार से यदि नाम कोई करे तो कलयुग में जल्दी बहुत शीघ्र इसका कल्याण, उसको कुछ नहीं करना है, सारे उसको कन्वर्सेशन अपने आप नाम करने से ही हो जाएगा। उसी में नौधा भक्ति इत्यादि सभी कुछ उसी नाम के अंदर में। यदि और कुछ न करे बस इस मंत्र का करे तब तो हो जाए, किंतु शब्द ब्रह्म होना चाहिए। शब्द ब्रह्म माने क्या? गुरु जो मन में धारण करता है और शब्द में सर्वदा नाम करता है, नाम में उसकी सिद्धि हो गई है, वो यदि नाम देगा तो तब शब्द ब्रह्म होगा। और नहीं तो अपने आप करने से पुस्तकों में देखा हुआ लिख कर इसे नहीं होगा। इसलिए सतगुरु का पदाश्रय करके इस नाम को करने से दृष्टि गति होती है। एक शब्दों में सारे वेद उपनिषद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत गीता का शब्द किए गए हरि नाम सबका। इसलिए आप उन लोग कुछ करें न करें, घर में भी बैठे रहे, एक आदमी मर रहा है क्या करेगा? हरि नाम पर अभी आज जा रहा था तो सुनाई पड़ा राम नाम शब्द है। देखो उस समय में भी राम नाम शब्द एकमात्र नाम में ही गति है और नाम ही शब्द है। इस चीज को ठीक समझ करके भगवान का नाम जरूर करो, इसके बाद में जो कुछ करना है। चैतन्य महाप्रभु जी ने इसलिए जन्म होते ही ये शिक्षा, कम से कम तो आरंभ भी करो, 1,00,000 नाम जपने की चेष्टा करो। दो चार नाम होने से नहीं होगा, होगा कुछ न कुछ रहा, संसारिक लाभ हो जाएंगे। और 1,00,000 नाम जपना, 1,00,000 से प्रभु से हाथ का दिया हुआ कोई चीज लेते नहीं तो नहीं लेते, यदि समझ रहे। 1,00,000 से 1 नाम भी यदि निकल गया वैसा तो सारे पाप यहाँ तक किस प्रारब्ध कर्म भी साथ दूर हो जाएंगे। विश्वास करो अजामिल ने इतने पाप किए, कोई पाप भोगना पड़ा? अर्जुन और भीम ने लाखों लोगों को मारा युद्ध में, कोई भोगना पड़ा नहीं? इसलिए सारे पाप भी दूर हो जाएंगे। यदि कुछ किया भी है तो नाम के प्रभाव से सब कुछ, समस्त नामों में यही नाम सबसे श्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु कुछ दिनों के बाद जब बड़े हुए किंतु सब भगवत संबंधी भी जाने की कुछ दिनों के बाद में जब बड़े हुए और तो अपनी संस्कृत की पाठशाला खोल ली, उसमें व्याकरण पढ़ाने लगे। कुछ दिनों के बाद में एक केशव कात्यायनी नाम का बड़ा प्रसिद्ध दिग्विजयी पंडित आया, विश्व के सारे विद्वानों को काशी वाराणसी दक्षिण में मथुरा और कहां कहां सब जगह घूम करके समस्त विद्वानों को परास्त करके नवद्वीप में आया। उस समय नवद्वीप में केवल संस्कृत के पंडित ही कम से कम जो पढ़ाते थे वो लाखों थे, तो छात्रों की बात नहीं किया। कितना बड़ा भारी विद्या का, संस्कृत विद्या का केंद्र था वो, वहां आया। यदि वहां पर विजय कर लेंगे सब जगह विजय कर लेंगे। वहां के पंडित डर गए उसे, वो सरस्वती का वर्ग पुत्र था, सबको हरा देता था। जब आया नवद्वीप में झिझोड़ा खिंचवाया कि कोई नियम से साथ प्राप्त कर, कोई भी सामने नहीं आए, हजारों ऊँटों पर उसकी गाड़ियों पर, उसकी गाड़ियों पर ऊँटों पर पैरों पर उसकी पुस्तकें लद करके आए जिसमें वो प्रमाण देता था और वो समस्त पुस्तक शब्द था। पंडित ने कहा कि जब ये छोटा बीमारी अभी 16 वर्ष का है, व्याकरण पढ़ाता है, कुछ नहीं जानता, वो हम लोगों का शिष्य है, उसको हरा देगा तो हमारे पास में आ जाए, और यदि वो हार जाएगा तो हम लोग हार जाएंगे और जीत जाएगा तो हम लोग जीत जाएंगे। वो देखा जी छोटा सा बालक ये बैठा तेजस्वी, कहाँ रहता है, गंगा के घाट पर शाम को जाता है अपने छात्रों के साथ, उसकी उम्र कम है और उसके छात्रों की उम्र बड़ी बड़ी है, इतना वो किसान लड़का है प्रतिभाशाली, शाम को अपने शिष्यों के साथ में लंबी चौड़ी पगड़ी बांधकर और वहां पर पहुंचा। ये छोटे से निमाई पंडित बड़ी प्रतिभाशाली अपने छात्रों के बीच में सैकड़ों और बीच में बैठा हुआ उसे कुछ संस्कृत में ही वार्तालाप कर रहा है, उसे कुछ पूछ रहा है, कुछ बतला रहा है। इस समय केशव काश्मीरी अपने शिष्यों के साथ में हजारों आया, वहीं पर बैठ गया और उनकी प्रश्नोत्तरी सब सुनने लगा। ठीक है, लड़के तो बड़ी प्रतिभाशाली और बीच में जो बैठा है ये तो बड़ा तेजस्वी आदमी पड़ता है। किसी से पूछा कि वो बीच वाला लड़का कौन है, अरे यही तो निमाई पंडित है, ये निमाई पंडित है, इसको डर लग गया कि तो बड़ा तेजस्वी लड़का है। जब उनका व्याकरण का कुछ पूछना चूछना ये हो गया तो बच्चे वो लोग पूछा पूछा करके लेंगे केशव काश्मीरी आया है और सारे भारतवर्ष का दिग्विजय करके नौदेश में आया। तो महापुरुष जी ने निमाई पंडित जी ने कहा किसी का अभिमान नहीं रहता, जो अभिमानी होता है उसका संपर्क अभिमान जरूर चुकना चूर हो जाता है, देख लेना हो जाएगा चकना चूर कहीं नहीं से। इतने में वो पंडित बच्चों के पास में आया और बोला इन लोगों से, महाप्रभु जी उसको देख करके बोले, सुनते हैं कि आपके तो काश में बड़े विद्वान आदमी हैं, गंगा जी के संबंध में कुछ आप नए नए महिमा के लिए बोलिए तो देखें। सुन करके बोला जी अच्छी बात है, धड़ाधड़ सैकड़े श्लोक नए नए अलंकार अनुप्रा इत्यादि के साथ सभी सभी बाकी ये सतारे और पकारे करके शब्द निकले, कहीं पापा करके शब्द निकले, कहीं टूट कहीं टूट क्यों करके सभी आश्चर्य से और उसके तरफ में देखने लगे और वो भी बड़े शांत से देखने लगा, देखो अब हमारी खाती है
कैसे बोल रहा।
तो इन्होंने कहा निवाई पंडित ने, पंडित जी आप तो अपने श्लोक बोले नए नए, मैं चाहता हूँ इसमें कोई भी श्लोक आप लेकर के उसकी थोड़ी सा अर्थ को बदलाइए कि इसमें कौन सा दोष है कौन सा दोष है। केशव काश्मीरी के पत्र में कोई भी दोष नहीं होता, सभी अलंकार अनुप्रास और सभी गुण ही होते हैं, तो आप पूरा न मानिए तो मैं इसके पांच गुण पांच गुण
कौन सा श्लोक बोलूं।
तो उसने कहा इसको तो याद होगा नहीं, मैं तो आंखी की तरफ देखने श्लोक बोल गया तो ये बीच से याद कैसे रखेगा, तो जाके कौन सा श्लोक बोलो। ठीक बीच से एक श्लोक उन्होंने झट जाकर कहा था और भी सुरवेरे शाम से स्पष्ट रूप में उसको बोला जैसे कि साथ ये तुमने कैसे याद कर लिया। तो ये कहते हैं यदि सरस्वती का कोई परम पुत्र हो सकता है तो भगवान की कृपा से कोई सुखिखर भी तो हो सकता है, अब तो कुछ डर गया भीतर भीतर। महाप्रभु जी ने कहा कि अच्छा मैं इसका दोष गुण मैं बतलाता हूँ सुनिए। इन्होंने उसके पहले तो पांच गुण बोले और पांच गुण बोलने के बाद में एक शब्द को लिया भवानी सरता, कहिए आपने ये क्या कर दिया, चौपट कर दिया सब अर्थों। भवानी किसको शब्द है, भव माने शंकर और उनकी पत्नी भवानी, भव से भवानी हुई और आपने लिख दिया भवानी फरता, तो भवानी का भी अगर कोई घटा हो गया आ रहा है समझ में,
इसे मतलब
भव की पत्नी
भवानी
और पूर्णता की पति ये कैसे हो गया,
मतलब पार्वती जी श्री बच्चों का दूसरे भाई पति ढूंढ लिया,
भव मैंने शंकर जी उनकी पत्नी हुई पार्वती जी भवानी और भवानी का भरता और शंकर जी का पृथ्वी उनका कोई भरता होगा, अब तो उसकी अपना एकदम गड़बड़ होगी, कुछ उत्तर नहीं दे सका, इस तरह से उसको पांच गुण और पांच दोष बदला है, कुछ खंडन नहीं कर सका, नस्तक कर दिया और बच्चे लोग ताली बजा के हंसने लगे, इन्होंने बच्चों को कहा देखो सम्मानित व्यक्ति को हंसना नहीं चाहिए और उनको कहा अब कल आएंगे ठीक हम लोग बात, अब जाइए पंडित व्यक्ति है सोचिए सोच बच्चा के पिया है, वो तो चला गया रात में अपनी सरस्वती देवी को चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ करके समाधि लगा लिया और बोला कि देवी आपने हमारे ऊपर में इतनी कृपा की और हराया तो ये कुछ लड़के से जो कुछ नहीं जानता व्याकरण भी नहीं जानता और उसे हरवा दिया, बड़ी लज्जा की बात मैं प्राण छोड़ दूंगा आपकी आराधना भी नहीं करूंगा, तो वो बोली उसको दर्शन दिया और बोली अरे तुम इसको साधारण बालक मत समझो ये हमारे पति हैं, असल हमारे पति यही हैं, ये कृष्ण स्वयं हैं तुम नहीं समझता, अब जब इसे विद्या का अभिमान छोड़कर के इनके चरणों में गिरो और जाकर के क्षमा मांगो, सवेरे उठे ही वहां पर पहुंचा उनके दरवाजे पर और क्षमा मांगने हमको क्षमा करके मैं समझता नहीं था, ये तो हमारी देवी ने बताया कि आप स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने कहा कि देखो विद्या का फल शास्त्रार्थ और शास्त्र नहीं है, विद्या का फल क्या है भगवान के चरणों में रचि है चित्त धातु विद्या, भगवान को जिस समय नहीं जाना वो विद्या विद्या नहीं है, जो लोग कृष्ण को भगवान नहीं जान सके सारे देवताओं को ही कृष्ण के समान समझते हैं वो अपराधी जीव है, गणेश शंकर दुर्गा काली इत्यादि भगवान की शक्तियां हैं, भगवान ने उनको शक्ति दी है उनकी भी ड्यूटियां हैं इसलिए कुछ कुछ देती हैं, किंतु कृष्ण के आसन पर बराबर बैठ जाएंगे ये अपराध आप लोग मत करें, उनको सम्मान दीजिए गुरु के रूप में उनको देवता देवी के रूप में भगवान की विभूति के रूप में एक किसी को भी सम्मान देंगे, किंतु एक बेटिया को अपनी भैया के बराबर बनाकर एक आसन पर मत बैठाओ, ये सब चीजों पर फिक्र गोपीनाथ जी और सब देवता लोग एक नहीं है गणेश जी एक नहीं है आज संसार में यही हो रही है और आप लोग भी अधिकांश लोग ऐसे ही करते होंगे, ऐसा मत करो उनका यथा स्थान दो, बेटा बेटा है पुत्र पुत्र है पति पति है वो पितामह जी पितामह है, ये सबों का आपने संबंध जैसा है वैसा रहना चाहिए, सच नहीं एकमात्र जगत के पति हैं एक एक अंश कला उनका कृष्ण भारत ने घोषणा की है गीता ने घोषणा की है गीता के जो गोष्ठी को रख करके एकांतिक रूप में राधा कृष्ण का ये राधा गोपीनाथ जी का गोविंद जी का अंश है, तब तो आपका कल्याण होगा, यही महाप्रभु जी जब और बड़े हुए और बड़े से बड़े हुए गया में गए अपनी भैया भाग का पिंड देने पिता का पिंड देने जैसा लोग संसार वाले करते हैं, गया में गए स्नान किया इतने में वो गया के में गदाधर जी का पाद पद्म की पूजा कर रहे थे, इतने में बहुत बड़ी संत से भेंट हो गई, उनका नाम था ईश्वरपुरी बहुत उच्च कोटि के प्रेम में गदगद होकर के शास्त्र में रोया था एवं प्रतापवती नाम कृत्या जाता अनुरागो चित्त उच्च हसत तपो रोग, कभी हंसते कभी रोते कभी जमीन में गिर करके लौटते पलौटते कभी हंसने लगते भगवान के लीलाओं को देख करके नाम करते ये वहां पर मिल गए, इनको देखते ही इनको प्रणाम किया स्वयं भगवान होने पर भी बोले कि देखो ये आपके समान इस समय में कोई भी
भक्त ही।
मैं आपको गुरु के रूप में ग्रहण करता हूँ। मैं अपने आप को, अपने शरीर को, आत्मा को, अपनी सब चीजों को आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। आप जैसा हो ऐसे हमारे आप कल्याण। मैं जानता हूँ एक चीज व्यक्ति देता है तो उसी व्यक्ति का उद्धार होता है जिसको पिंड दिया गया। और उद्धार क्या हुआ? कुछ समय के लिए कुछ कल्याण हुआ, फिर जन्म देना पड़ेगा। और जो संतों की सेवा करता है, बच्चों का संग हो जाता है, उसका कोटि कोटि पितृ लोग ऐसे ही उद्धार होता है। इस चीज को याद रखना है। संतों की सेवा भगवान की सेवा से भी बड़ी है, किंतु संत भी वैसा ही होना चाहिए। जो कृष्ण का अतिरिक्त कुछ जानता नहीं, गोपीनाथ के अतिरिक्त कुछ जानता नहीं, ऐसा संत होना चाहिए। तब तो वैसे ही संत होना। तो उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया और बोले आप जैसा कहने वैसे ही करूंगा, यह शरीर मेरा नहीं है। अभी संसार से हमारी नौका पार करके राधा गोविंद देवी के चरणों में हमको समर्पण। ठीक है, उनको हरि नाम दिया और शुद्ध रूप में दीक्षा दी और दीक्षा देकर के उनको मंत्र दिया, मंत्र जपने लगे। अद्भुत उसका फल, क्या फल? कुछ दिनों के बाद में यही महाप्रभु जी काशी में पहुंचे। वहां पर एक कितने हजार 7,000 का गुरु प्रकाशानंद उनको वेदांत पढ़ाता था। क्या भगवान का अंश नहीं है? भगवान का नाम नहीं है, कोई गुण नहीं है। हम सभी ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। आप भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, बेटा भी है, बाप भी ब्रह्म है, दीदी भी ब्रह्म है, अलग से कोई ब्रह्म नहीं। और जब हम गर्भ हो जाएंगे तो हम ब्रह्म मिल कर सके। ये सब विचार बहुत गलत है। ऐसे लोग नाम करने पर भी उनका कल्याण नहीं होगा। अरे पराब्रह्म तो एक है, एक गोपीनाथ ही है, दूसरे कोई पराब्रह्म नहीं है। इसलिए सभी ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म है तो फिर पिलाकर है, ब्रह्म बूढ़ा होता है, दांत टूटता है, उसको किडनी कैंसर होती है। आजकल कितने बड़े बड़े ये सब आधुनिक बातें हमको हो रहा है। क्यों हो रहा? फिर पिलाते हैं, मरते हैं, ब्रह्म तो मरता नहीं है। इसलिए यह बात ठीक नहीं। हम सभी ब्रह्म के सेवक हैं, भगवान के दास ब्रह्म नहीं है। इस चीज को समझना चाहिए। तो वो अद्वैत पाठी प्रकाशानंद सरस्वती वहां पर बड़ी सभा कर रहा था, उसमें ये पहुंचे, इनको निमंत्रण किया गया वहां पर जाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए। तो ये भी कुछ लीला वर्षा गए, कुछ लोगों के कहने से गए। जब गए तो वहां पर बड़ा पंडाल लगा हुआ था और उसके पंडाल पर उनके सब ऋषि किए अद्वैत पाठी बड़े बड़े सन्यासी सब अर्थक 7,000 सन्यासी बैठे थे और उसके बीच में वो बैठा था। जब निमाई पंडित जी वहां पर गए, दीन ही होकर के जहां पर पैर होते हैं उसी पैर होने के स्थान पर बैठे और एकदम ऐसे बैठे। अब तो सन्यासियों का जब गुरु था वो झट वहां से उतर करके आया और उनका हाथ पकड़ के बोला कि तुम तो अद्वैतवादी सन्यासी, हमारे ही संप्रदाय के हो, तो नीचे के बैठो, ऊपर बैठो। नहीं नहीं, आप लोग महान व्यक्ति हैं, बड़ी बाती हैं, ऊपर बैठिए, हम तो नीचे बैठने योग्य हैं, हम तो योग्य व्यक्ति नहीं हैं, हम तो मूर्ख हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात मत कहो। तुम्हारे अंदर में सभी बातें ठीक है, कि तुम्हें एक बात है, तुम्हारा गुरु भी
वो कौन?
केशव भारती जो तुमको संन्यास किया था, वो भी भारतीय संप्रदाय का अद्वैतवादी। किंतु तुम एक बात क्यों, ऐसा क्यों कर? तुम ये नाचते गाते हो, रोते हो और नृत्य करते हो, ये ऐसा क्यों करते? सन्यासियों के लिए नृत्य करना और संगीत वाद्य बजाना और नाचना गाना ये उचित नहीं। वेदांत पढ़ो और यदि होगा तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे वेदांत में। तुम उन्होंने हाथ जोड़ करके, वो तो बहुत उम्र के व्यक्ति और जिनके 7,000 सन्यासी शिष्य को कैसा होगा, और ये सभी बालक सभी बीमारी हैं, छोटे से अभी उम्र की, हाथ जोड़ करके बोले देखिए वेदांत में हमारा अधिकार है। क्यों हमारे गुरु जी ने जब हमको मंत्र दिया तो उन्होंने कहा एक श्लोक याद कर लो क्या हरे नाम हरे नाम हरे नाम करो नाचते वो नाचते वो नाचते वो सभी अंदर छोटी बात वेदांत का अध्ययन करने से भी उसे कल्याण नहीं है। और इसके बाद में हमको मुख देकर के कहा कि यही मंत्र जपो क्या हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम। और इसके साथ में हमको एक और मंत्र दिया क्या गोपाल मंत्र। मैं इस मंत्र को करने लगा मंत्र की ऐसी ऐसी अद्भुत शक्ति हमने देखा क्या कुछ दोनों के बाद में गोपाल मंत्र जपने के साथ साथ में एक छोटा सा गोपाल कौन यशोदा का कन्हैया लाल बहुत ही अलमेरा सुंदर श्याम सुंदर मुरली बजाता हुआ मोर पंख धारण किए हुए ऐसा सुंदर कि हमने जीवन में देखा नहीं हमने देखा उसको। मैं एकदम पागल हो गया। मैं उठकर के खड़ा हुआ उसको पकड़ने के लिए दौड़ा वो पीछे हटता गया। हटते हटते जब एकदम निकट में मैं पहुंचा तो झट में गए कहा कि एक पेड़ के नीचे अंतर गया। अब तो मैं रोने लगा कभी हंसता कभी चिल्लाता कभी कुछ करता। मैं गुरु जी के पास गुरु जी आपने पैसा मंत्र दिया इसका क्या जाने क्या हमको भूत पकड़ दिया ना जाने क्या हो गया इस मंत्र में कैसी शक्ति है जो मैं पागल होकर के नाचता हूँ कभी कभी गाता हूँ कभी जमीन में रोड़ तोड़ करता हूँ मुझको समझ में नहीं आता कि मैं क्या गुरु जी ने मुझे आलिंगन कर बोले जी हमारा जन्म भी सार्थक कर दिया तूने तुम्हारा से जन्म सार्थक परिणाम का करने का फल मंत्र करने का तो यही फल है कृष्ण का आकर्षण हो जाए वो पागल हो जाए संसार की दृष्टि से उन्मत्त हो जाए कृष्ण के नाम में यही तो हरिनाम का मंत्र का जिसने अनुभव नहीं किया हरिनाम प्रत्यक्ष में जिसको आनंद नहीं आता जिसको कोई टेस्ट नहीं आता नाम जपने के रख में नींद आती है उसका जीवन बेकार और जिन लोग हरिनाम करते हुए किस प्रकार से करते हैं उनका जीवन सार्थक। भगवान के एक एक अक्षर में ह रे कृष्ण ये 25 अक्षर में भगवान के 25 रूप से किसी में राधा गोविंद किसी में राधा गोविंद किसी में राधा मदन मोहन किसी में राधा काम किसी में कुछ ऐसा बोलता है और प्रेम में जीवन हो जाते हैं दूसरों को भी जीवन बना ये नाम का फल है। इस प्रकार से सारे भारत वर्ष में और तो सारे विश्व में महाप्रभु की कृपा से ही चारों तरफ में ये प्रचार कर और थोड़ी सी देखा जब वहां से लौटे गया थे कुछ दिनों के बाद में उन्होंने व्याकरण पढ़ाना बंद कर दिया। प्रत्येक अक्षर का धातु का शब्द का पत्ते का पाठ क्या करें वो कृष्ण ही देखें इसलिए पढ़ाए क्या अंत में पढ़ाना बंद कर दिया। उनके बच्चे भी उनके साथ बोलिए धीरे धीरे बैराग्य होने लगा घर में नहीं रह किसी किसी को बदला दिया मैं कल अब जाने वाला हूँ नित्यानंद प्रभु जी और उनके साथियों को चंद्रशेखर आचार्य और किसी किसी को बदला दिया और किसी को नहीं बताया गया। रात हुई रात होने के पहले आज सवेरे ही चैतन्य महाप्रभु जी निमाई पंडित जी गांव में गए प्रत्येक लोगों से मिले सबको अखबार भर करके मिले और किसी ने दुख दिया किसी ने लौकी दिया किसी ने पूछ दिया सिद्धक थोड़ा बात भेजा के यहाँ गए उनसे लौकी मांग ली किसी ने दूध दे दी ये सबको लेते हुए सबसे मिलते हुए बड़े आराम के साथ में आनंद के साथ में शाम को भर भर मैया को कहा कि मैया ये दूध है और ये लौकी है आज दूध की लगलगी बनेगी आप लोग जानती हैं कि नहीं जानती हैं दूध की लग जैसे जैसे पानी में चावल सिद्ध किया जाता है वो दूध में ही लौकी सिद्ध होती है उसमें बड़े सुंदर मसाले होते हैं और बहुत सुगंधित बहुत टेस्टफुल होता है। मैया ने बनाया ठाकुर जी को भोग लगा और भोग लगाने के बाद में निमाई पंडित जी को दिया मैया ने उन्होंने खूब प्रेम के साथ में खाया जाने के बाद में जब शाम हो गई, आज बहुत दिनों तक अपनी पत्नी से बोले नहीं थी विष्णु प्रिया जी से, बहुत दिन हो गए। क्योंकि जमीन कोर्ट में रहते तो हरे कृष्ण करते हुए प्रसाद खा करके जीत जाते, कोर्ट नहीं रहता सब समय पवन नाम की आता थे। आज बड़े संत रुष्ट हैं, अपनी पत्नी के घर में गए और अपने हाथों से उसको श्रृंगार किया और अपने हाथ से उसके मुख में पान की दी थी और बड़े प्रेम से उसके थोड़ी पकड़ करके बड़े प्रेम से आज बातचीत करने लगे। वो तो थोड़ी सी घबरा गई, आज बहुत दिन हो गए हमसे कोई बात नहीं की, सब समय कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे, कभी रोते थे कभी पागल हो जाते, आज तक हमसे बात नहीं हुई और आज ऐसा कर रहे हैं क्यों? आज मैं इसको गई गंगा स्नान करने गई, रास्ते में हुटक लग गई, हुटक समझते हैं तो कर लगे और हमारे नख उसके ऊपर होकर के रक्त निकलने लगे। आज क्या बात हो गई, ऐसा हो गया? और गंगा में स्नान करते समय विवाह का समय का हमारी नाक में जो लवंग कहते हैं बेसर, वो बेसर मुझे लौंग बेसर कहते हैं शुद्ध भाषा में,
पंजाबी में लौंग कहते हैं।
दो बेसर ही थी, तुम बेसर को समझ, तो विवाह का थी बेसर थी, वो बेसर गंगा जी में गिर पड़ी, खोजते खोजते हार नहीं मिला, माथा टुकराया। आज हमारे विवाह का समय था, ये बेसर भी चला गया, न जाने आज कौन सी विपत्ति आई। घर आकर के रोने लगी, भैया ने समझा क्यों रोती है, तुमने सारी कहानी कुछ शाम करा दी, ऐसा होता है कोई बात। और शाम को आज पति उनका श्रृंगार करके बड़ा प्रेम से बोल रहे हैं बहुत दिनों के बाद में, उसने सोचा ये प्रदीप होता है तब प्रदीप, तो वो जब बुझने को होता है तो झप झप और फिर देखा है कभी, जब दीप बुझने को होता है तब ऐसा होता है। तो आज हमारे न जाने किसने क्या लिखा है, आज हमारा क्या, आज हमारा क्या होगा सोच रही थी। और इतने में प्रभु की जो माया ऊपर ऐसा किया, ये आंखों पर हजार हजार मन के पत्थर चढ़ गए और जग नहीं सकी, वो जगाना चाहते हैं किंतु जग नहीं रही, बहुत चेष्टा की। फिर काफी रात के समय के पहले जब सो गई, उनके तरफ में एक बार देखा और बस धक्के निकल गए, एक छोटी और एक चादर बनी। सामने गए दरवाजे पर मैया खड़ी थी, मैया जानती थी कुछ कुछ, मैया लकड़ी हो गई है सूख कर, आंखों में आंसू भी नहीं है, चेतनता भी नहीं है, खड़ी थी खड़ी रह गई। और निमाई पंडित ने अपनी मैया का चार बार परिक्रमा करके प्रणाम करके और फूल लेकर के सिर पर वहां से निकल गई। मैया बोल रही थे कितना दुख होगा आप लोग समझ गए। और जाकर के पासी में गंगा जी माँ का महीना है, जाने का मौसम सब लोग सबका काम रहे और उसी में गंगा नदी में खड़ी बोल करते हुए और कूद करके और दूसरे पार में चले गए कंटक नगरी और वहीं पर उन्होंने संन्यास लिया। और संन्यास लेकर के फिर कहाँ गए, जगन्नाथपुरी में चले गए भैया का आदेश लेकर के, और वहाँ पर किस प्रकार से रह करके सारे भारतवर्ष में नाम का प्रचार किया और इन गोपीनाथ जी के प्रेम का प्रचार किया। किस रूप में, नाम संकीर्तन के माध्यम से किया। पहले नाम तो था
युग धर्म नाम,
किंतु उसके द्वारा प्रेम का प्रेम नहीं मिलता था, उसमें प्रेम नहीं था। स्वयं कृष्ण ने महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर के इस नाम के माध्यम से, कौन सा नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। यदि कोई दीक्षित होकर के सदगुरु से और अपराध को छोड़कर अनर्थों को छोड़कर संबंध ज्ञान के साथ में कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, इस प्रकार से नियमित रूप में कोई हरे नाम करे
बहुत शादी में उसके पाप साफ भूल जाएंगे, उसके अनर्थ दूर हो जाएंगे, अपराध पूर्ण हो जाएगा और तब सर जी वो वृत्त प्रेम हो पाएगा।
गौ प्रेमानंद।
आज हमारा यहाँ का अंतिम दिन है, आप लोग सभी से निवेदन है कि कलयुग का नाम सब लोग करेंगे, अपना मन तो जो कुछ है करे करें, गोपीनाथ जी का दर्शन करेंगे, इनके चरणों में प्रार्थना करेंगी या करेंगे कि ब्रज का प्रेम के नीचे हम कुछ नहीं चाहते, राधा जी की दासित्व हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, और इस हरे नाम का बहुत कीर्तन करेंगे, जोर से करें, धीरे धीरे किसी भी प्रकार से ये नाम चलते फिरते उठते रसोई बनाते हुए भी हरे नाम कर सकते हैं। अब समय हो गया और यदि हमारी कुछ त्रुटि हुई हो, कठोर वाणी हो गई है तो आप लोग मन से निकाल करके क्षमा करें। गौ